एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी बहुत रेलिवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा।
मैं हूँ मेजबान 2
और मैं हूँ मेजबान 1।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलियम जेम्स की क्लासिक किताब द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस की। अब नाम सुनकर शायद लगे कि ये सिर्फ धर्म मतलब मजहब के बारे में है।
हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इंसान के मन, उसके बहुत ही निजी अनुभवों और विश्वास की जो ताकत होती है ना, उसके बारे में है।
बिल्कुल। और आज के जमाने में ये जरूरी क्यों है, आपने पूछा था?
हाँ, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में
सोचिए, एक तरफ तो विज्ञान है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता है। अक्सर लगता है जैसे दोनों में कोई तनाव है, कोई टकराव।
सही कहा। और ऊपर से हम सब कितने अलग अलग विश्वासों, अलग अलग मान्यताओं वाले लोग हैं जो साथ रह रहे हैं,
तो ऐसे में ये समझना कि भाई किसी एक इंसान के लिए उसका अपना अंदर का अनुभव इतना मायने क्यों रखता है?
हाँ, ये आपसी समझ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये किताब उसमें मदद करती है।
तो चलिए पहले लेखक से मिल लेते हैं। विलियम जेम्स 1842 में जन्मे, 1910 तक रहे। नाम ही काफी वजनदार है।
हाँ, वो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, मनोवैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी।
और एक बड़ी दिलचस्प बात, उन्होंने हार्वर्ड से मेडिकल डिग्री ली थी। डॉक्टर थे वो?
जी हाँ, लेकिन डॉक्टरी की प्रैक्टिस कभी नहीं की। उनका मन जो था वो दर्शन और मनोविज्ञान में ज्यादा लगता था। और हाँ, उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का पितामह मतलब फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है।
उनकी एक और बड़ी पहचान है वो फिलॉसफी जिसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, व्यावहारिकता।
व्यावहारिकता, इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी विचार की, किसी आइडिया की सच्चाई इस बात में है कि वो आपकी जिंदगी में काम कैसे करता है, उसका नतीजा क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है।
जेम्स इसे विचारों का कैश वैल्यू भी कहते थे, मतलब असल जिंदगी में उसका क्या मोल है।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। सोचिए, एक डॉक्टर की वैज्ञानिक नजर, एक मनोविज्ञानिक की इंसान के मन की गहरी समझ,
और एक दार्शनिक का खुलापन, ये सब एक ही इंसान में।
बिल्कुल। और इसीलिए वो न तो किसी धर्म के कट्टर सपोर्टर थे, और न ही वो धर्म को पूरी तरह खारिज करने वाले कोई हार्डकोर वैज्ञानिक थे।
वो बस समझना चाहते थे इंसान के अनुभव, खासकर ये जो आध्यात्मिक या धार्मिक अनुभव होते हैं, ये आखिर हैं क्या और ये इतने मायने क्यों रखते हैं।
और ये भी जानना जरूरी है कि वो खुद भी जिंदगी के बड़े सवालों से जूझे थे, जैसे डिप्रेशन या फिर जिंदगी का मतलब क्या है, इस तरह के संकट।
अच्छा,
शायद इसी वजह से जो धार्मिक अनुभवों में उथल पुथल होती हैं, जो बदलाव आते हैं, उन्हें वो इतनी गहराई से, इतनी हमदर्दी से समझ पाए। उनकी लिखाई में ये दिखता है, गहरी समझ भी है और एक आलोचनात्मक नजर भी, बैलेंस है।
तो अब आते हैं किताब पर, द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। आखिर ये है किस बारे में? जैसा हमने कहा, ये धर्म के बाहरी तामझाम पर फोकस नहीं करती, मतलब मंदिर, मस्जिद, रीति रिवाज, सिद्धांत।
हाँ, वो सब नहीं। जेम्स का पूरा ध्यान है व्यक्ति पर, उसके निजी एकदम अकेलेपन के अनुभव पर।
वो एहसास, वो काम, वो अनुभव जो किसी इंसान को तब होते हैं जब वो अकेला होता है और खुद को किसी दिव्य शक्ति या किसी बड़ी सच्चाई या बस कुछ और से जुड़ा हुआ महसूस करता है।
और किताब का जो सबसे, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी आइडिया है वो ये कि किसी धार्मिक विश्वास को परखने का सही तरीका क्या हो।
हाँ, ये बड़ा सवाल है।
जेम्स कहते हैं ये मत देखो कि वो विश्वास आया कहाँ से, उसकी जड़ें क्या हैं। हो सकता है किसी को कोई अनुभव किसी बीमारी की वजह से हुआ हो, या शायद किसी मानसिक परेशानी के कारण।
जेम्स कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, जड़ों को छोड़ो, फल देखो।
फल देखो मतलब देखो कि उस विश्वास या अनुभव का उस इंसान की जिंदगी पर असर क्या पड़ रहा है।
क्या वो इंसान पहले से बेहतर बन रहा है, ज्यादा दयालु, ज्यादा हिम्मत वाला? क्या उसकी जिंदगी में कोई मतलब कोई सार्थकता आ रही है?
अगर जवाब हाँ है तो जेम्स के मुताबिक वो विश्वास उस व्यक्ति के लिए सच है, कम से कम उसके लिए तो काम कर रहा है।
यही है व्यावहारिकता का असली टेस्ट।
तो ये किताब एक तरह से उस जमाने के दो एक्सट्रीम्स के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ तो वो वैज्ञानिक सोच थी जो हर चीज को बस मैटर, पदार्थ मानती थी, साइंटिफिक मटेरियलिज्म,
और दूसरी तरफ थे वो कट्टर धार्मिक संस्थान जो अपने खास नियमों और डॉग्मा पर ही अटके थे।
जेम्स ने बीच में खड़े होके कहा, रुको जरा, इंसान की जो अंदरूनी अनुभव है वो भी उतने ही असली हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें गंभीरता से लेना होगा। ये सिर्फ इमोशंस का खेल नहीं है, ये हमारी मनोवैज्ञानिक सच्चाई का हिस्सा है।
चलिए आप थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जेम्स ने ये किताब असल में 20 लेक्चर्स के आधार पर लिखी थी। अब हम हर लेक्चर पर तो नहीं जाएंगे साहिर,
नहीं नहीं,
लेकिन कुछ जो बड़े आइडियाज हैं जो उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं उनको समझते हैं।
शुरुआत में ही जेम्स एकदम साफ कर देते हैं, मेरा फोकस व्यक्तिगत धर्म है, संगठित धर्म नहीं।
और वो उस मेडिकल मटेरियलिज्म वाली सोच को सीधे सीधे खारिज करते हैं।
हाँ, वो आइडिया के अगर किसी को अजीब से धार्मिक अनुभव हो रहे हैं तो जरूर दिमाग में कोई केमिकल लोचा है या कोई ट्यूमर वगैरह होगा।
जेम्स का जवाब बड़ा मजेदार था इस पर।
क्या था?
उन्होंने कहा, भाई हर सोच हर भावना का दिमाग में कोई ना कोई बेसिस तो होता ही है, चाहे वो वैज्ञानिक सोच हो या धार्मिक। तो सिर्फ इसलिए कि किसी अनुभव का कोई न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन मिल गया, उसे आप खारिज क्यों कर रहे हो?
सही बात है। असली सवाल तो ये है कि उसका नतीजा क्या है, उसके फल क्या है। फिर वही बात आ गई।
हाँ, फिर जेम्स दो तरह के बुनियादी स्वभावों की बात करते हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प है। पहले हैं स्वस्थ चित्त लोग, हेल्दी माइंडेड।
अच्छा, ये कौन लोग हैं?
ये आमतौर पर आशावादी होते हैं, जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, दुख तकलीफ को ज्यादा बड़ा नहीं मानते। शायद वॉल्ट विटमैन जैसे कवि, जिनकी कविताओं में जिंदगी का जश्न है, वो इसी मिजाज के थे।
इनके लिए धर्म शायद एक तरह की शुक्रगुजारी है, यूनिवर्स की अच्छाई से जुड़ना है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर दूसरे सिरे पर हैं रुग्ण आत्मा वाले लोग, सिक सोल।
ये नाम ही थोड़ा भारी है।
हाँ, ये वो लोग हैं जो दुनिया में मौजूद बुराई, दुख, अन्याय, इन सबको बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इनमें उदासी, चिंता, पाप का एहसास, जिंदगी बेकार है वाला भाव, ये सब ज्यादा हो सकता है।
जेम्स ने टॉलस्टॉय या जॉन बनियन जैसे लोगों का उदाहरण दिया है जो गहरी निराशा मतलब डिस्पेयर के दौर से गुजरे थे।
इन लोगों को लगता है कि दुनिया टूटी हुई है, इसे सुधारने के लिए किसी बाहरी, किसी दिव्य मदद की जरूरत है।
और आपको क्या लगता है जेम्स का झुकाव किस तरफ था?
लगता तो यही है कि बौद्धिक तौर पर वो रुग्ण आत्मा को ज्यादा वजन देते थे।
क्यों?
शायद इसलिए कि वो मानते थे कि ये रास्ता ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन शायद यही जिंदगी की पूरी सच्चाई, अच्छी और बुरी दोनों का सामना करता है।
और शायद इसी गहरे संघर्ष से ज्यादा बड़े, ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाले आध्यात्मिक अनुभव पैदा होते हैं।
शायद यही बात है। ये सोचने वाली बात है कि मुश्किलें हमें ज्यादा गहराई तक ले जा सकती हैं। अच्छा, तो ये रुग्ण आत्मा जब इतने संघर्ष में है तो रास्ता क्या है, बाहर कैसे निकले?
यहाँ जेम्स धर्मांतरण यानी कन्वर्जन की बात करते हैं।
धर्मांतरण?
हाँ,
मतलब धर्म बदलना?
नहीं नहीं, वो वाला धर्मांतरण नहीं। यहाँ मतलब है एक मनोवैज्ञानिक बदलाव से, वो प्रक्रिया जिससे एक बिखरा हुआ दुखी मन एक होकर शांत और स्थिर बनता है, एक यूनिफाइड सेल्फ बनता है।
अच्छा, अंदरूनी बदलाव।
हाँ, और ये बदलाव धीरे धीरे भी आ सकता है या फिर एकदम अचानक, जैसे कोई बिजली कौंध गई हो। जेम्स कहते हैं कि इसमें हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस का बड़ा रोल होता है।
लोगों को लगता है कि ये उन पर हुआ है, उन्होंने खुद नहीं किया।
बिल्कुल, और वो कई असली लोगों की कहानियां बताते हैं, केस स्टडीज, कि कैसे इस बदलाव ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया और अक्सर बेहतर के लिए।
तो अगर ऐसे अनुभव जिंदगी बदलते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, फल क्या होते हैं? यहाँ जेम्स संतत्व यानी सेंटनेस का विश्लेषण करते हैं।
संतत्व? मतलब हर कोई संत बन जाता है?
नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे, बल्कि वो उन गुणों को, उन क्वालिटीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो गहरे आध्यात्मिक जीवन से उभरते हैं, जो संतों में अक्सर दिखते हैं।
जैसे?
क्या गुण होते हैं? जैसे दुनिया और बाकी लोगों से गहरा कनेक्शन महसूस करना, किसी ऊंची शक्ति के साथ एक दोस्ताना, यू नो, रिश्ता महसूस करना, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को उस शक्ति के आगे सौंप देना, और अंदर से गहरी खुशी, एक आजादी महसूस करना।
और बाहर से ये कैसे दिखता है?
बाहर से ये तपस्या में, मन की शांति में, दिल की पवित्रता में, और दूसरों के लिए प्यार और करुणा में दिख सकता है।
लेकिन जेम्स यहाँ भी बहुत बैलेंस्ड है। वो ये भी मानते हैं कि यही धार्मिक जोश कभी कभी कट्टरता या दूसरों को बर्दाश्त न करने की हद तक भी जा सकता है। वो सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं।
हाँ, वो सिर्फ तारीफ नहीं करते। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे कई लोग इस किताब का दिल मानते हैं, रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म।
रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म।
जेम्स कहते हैं कि ये जो रहस्यमय अनुभव होते हैं ना, यही व्यक्तिगत धर्म का असली आधार हैं। ये वो पल हैं जब इंसान को लगता है कि उसे सीधे तौर पर कुछ पता चला है, कोई ज्ञान मिला है,
और उन्होंने इसकी चार पहचान बताई थी जो बहुत मशहूर हुई, याद है आपको?
हाँ, पहली थी अकथनीयता, इनएफिबिलिटी, मतलब इसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है।
अनुभव करने वाला बस इतना कह पाता है, वो क्या था मैं बता नहीं सकता।
दूसरी ज्ञानात्मक गुण, नोएटिक क्वालिटी, ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये ज्ञान की अवस्था है। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा सच समझ आ गया हो, कोई पर्दा हट गया हो दिमाग से।
हाँ, जैसे कुछ पता चल गया हो। तीसरी थी क्षणिकता, ट्रांजियंसी, ये अनुभव टिकते नहीं ज्यादा देर, आते हैं और चले जाते हैं
लेकिन उनकी छाप गहरी होती है। और चौथी?
चौथी निष्क्रियता, पैसिविटी, ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी मर्जी काम नहीं कर रही, कोई और शक्ति है जो आपको चला रही है या संभाले हुए है, अब बस एक रिसीवर है।
जेम्स का कहना था कि देखो भाई, ये अनुभव शायद दूसरों के लिए कोई सबूत न हो, लेकिन जिसने अनुभव किया है उसके लिए 100% ही असली हैं और बहुत मायने रखते हैं।
और ये इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारी ये जो रोजमर्रा की तर्क वाली चेतना है, रैशनल कॉन्शियसनेस, शायद यही सब कुछ नहीं है।
हाँ, इसके परे भी चेतना के दूसरे रूप, दूसरे आयाम हो सकते हैं, ये सोचना ही कितना रोमांचक है।
बिल्कुल, आखिर में जेम्स इन सब अनुभवों से कुछ दार्शनिक नतीजे निकालते हैं, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स। वो भगवान है या नहीं, इसके पुराने किताबी तर्कों में ज्यादा नहीं पड़ते।
उनका जोर अनुभव पर है, एम्पिरिकल।
हाँ, वो कहते हैं कि अलग अलग लोगों के अनुभवों को देखें तो उनमें एक बात कॉमन दिखती है, वो क्या? कि दुनिया की जो बेचैनी है, जो कमी है, उसे अपने अंदर के किसी ऊंचे हिस्से से जुड़कर दूर किया जा सकता है।
और ये ऊंचा हिस्सा बदले में ब्रह्मांड की किसी बड़ी चीज या कुछ ज्यादा, समथिंग मोर से जुड़ा है।
तो उनका निष्कर्ष क्या है? यही कि धार्मिक अनुभव मनोवैज्ञानिक तौर पर असली हैं,
रियल हैं,
और कुल मिलाकर अक्सर फायदेमंद होते हैं, और शायद वो हकीकत के किसी बड़े आध्यात्मिक पहलू की तरफ इशारा करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि वो किसी एक भगवान की परिभाषा पर जोर नहीं देते। वो कहते हैं ये जो ज्यादा है, ये मोर, ये शायद कई रूपों में हो सकता है, इसे वो टुकड़ों में अलौकिकता कहते हैं।
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और वो विश्वास करने के अधिकार, टू बिलीव, का भी बचाव करते हैं।
मतलब
ये कि जहाँ तर्क आपको कोई पक्का जवाब नहीं दे सकता, वहाँ अगर कोई विश्वास आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, ज्यादा सार्थक बनाता है, तो उस विश्वास को चुनना, उस पर दांव लगाना तर्क ही नहीं है, वो रैशनल है।
वाह, ये तो जबरदस्त बात है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, की टेकअवेज निकालने हो तो क्या होंगी?
मेरे लिए सबसे पहली तो जेम्स की वो व्यावहारिकता वाली अप्रोच है, प्रैग्मैटिज्म। ये सवाल के इस विश्वास से जिंदगी में फर्क क्या पड़ता है, कैश वैल्यू क्या है, ये धर्म की बहस को अमूर्त सिद्धांतों से हटाकर ठोस जिंदगी पर ले आता है।
दूसरी बड़ी बात, व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता। धर्म का असली सोर्स किताबों या संस्थाओं में नहीं है, वो व्यक्ति के दिल में है, उसके सीधे अनुभव में है। चर्च, मंदिर, धर्मशास्त्र, रीति रिवाज, ये सब बाद में आते हैं या सेकेंडरी हैं।
हाँ, बिल्कुल। तीसरा, वो जड़ों के बजाय फलों से आंकने वाली बात। किसी अनुभव का ओरिजिन क्या है, ये उतना जरूरी नहीं जितना उसका नतीजा। कोई मुश्किल, यहाँ तक कि बीमारी से जुड़ा अनुभव भी इंसान को बेहतर बना सकता है। ये सोच हमें दूसरों के प्रति ज्यादा खुला और कम जजमेंटल बनाती है।
सही कहा। चौथा, वो अलग अलग स्वभावों का स्पेक्ट्रम, स्वस्थ चित और रुग्ण आत्मा, कोई एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता। हमारे देश भारत में जहां इतनी विविधता है आध्यात्मिक रास्तों की, वहां ये बात कितनी जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों के रास्ते का सम्मान करें, चाहे वो हमारे जैसा ना हो।
और पांचवा, रहस्यमय अनुभवों को गंभीरता से लेना, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये सिर्फ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है, जेम्स कहते हैं ये ज्ञानात्मक हैं, नोएटिक हैं, ये ज्ञान दे सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल रैशनल चेतना की सुप्रीमसी को चैलेंज करते हैं।
इस किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे एक जगह जेम्स कहते हैं, सार बताते हुए, किसी इंसान के गुण कहां से आए ये जानना हमारे बस में नहीं, वो चाहे कितना भी अजीब क्यों ना लगे, हमें उसे उसके नतीजों से, उसके फलों से आंकना चाहिए। ये सीधे सीधे वही व्यावहारिकता है।
हाँ, एक और बात जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वो रुग्ण आत्मा के बारे में कहते हैं। सबसे गहरे और मुकम्मल धर्म शायद वही हैं जिनमें निराशा और दुख का सामना करने की हिम्मत सबसे ज्यादा हो। जो सिर्फ आशावादी नजरिया रखता है वो इंसान जिंदगी के गहरे रिकॉर्ड से शायद बाहर रह जाता है। मतलब मुश्किलों से जूझने वाले विश्वास ज्यादा गहरे होते हैं।
और ऐसे बात पर उनकी वो मशहूर लाइन जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, एक बात मेरे मन पर जोर डालती है कि हमारी ये रोजमर्रा की जागृत चेतना, जिसे हम तर्क वाली चेतना कहते हैं, वो चेतना का सिर्फ एक खास प्रतार है। इसके चारों तरफ एक पतले से पर्दे के पीछे चेतना के बिल्कुल अलग रूप मौजूद हो सकते हैं। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है।
बिल्कुल, और उनकी वो परिभाषा जिसने पूरी किताब का दायरा तय किया, धर्म व्यक्ति के अकेलेपन में होने वाले वो एहसास, काम और अनुभव है जब वो खुद को किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करता है जिसे वो दिव्य मानता है। कितना फोकस्ड है व्यक्तिगत अंदरूनी अनुभव पर।
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो सहानुभूति और सहनशीलता है, टॉलरेंस।
कैसे?
जब हम समझते हैं कि लोगों के आध्यात्मिक रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, स्वस्थ चित वर्सेस रुग्ण आत्मा, तो हम दूसरों को जज करना कम कर देते हैं। हम समझ पाते हैं कि उनका रास्ता उनके लिए सही हो सकता है, भले ही वो हमारे जैसा न हो।
बिल्कुल, और खुद को समझने में भी मदद मिलती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर कभी शक हो, निराशा हो, जिंदगी का मतलब समझ ना आए, जिसे आत्मा की अंधेरी रात भी कहते हैं, तो ये किताब बताती है कि ये सब इंसानी अनुभव का नॉर्मल हिस्सा है और शायद ये किसी बड़े बदलाव या ग्रोथ की निशानी भी हो सकते हैं।
ये आपको अपनी यात्रा को बिना किसी डॉगमा के, बिना किसी लेबल के समझने का एक फ्रेमवर्क देती है।
का लक्षण समझने के बजाय सम्मान से देख सकते हैं।
वो पूछ सकते हैं, अच्छा ये विश्वास आपकी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है, क्या ये आपको मुश्किल वक्त में ताकत देता है?
हाँ, और ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल भी बनाता है। जेम्स दिखाते हैं कि आप एक रैशनल साइंटिफिक सोच वाले इंसान हो सकते हैं और फिर भी आध्यात्मिक अनुभवों की सच्चाई और संभावना के लिए खुले रह सकते हैं। ये कट्टरता के दोनों सिरों, चाहे वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक, के बीच एक समझदार रास्ता है।
आखिर में हम जेम्स का वो व्यवहारिक टेस्ट खुद पर अपनी जिंदगी पर लागू कर सकते हैं।
मतलब?
अपने विश्वासों को देखें, अपनी आदतों को, अपनी संगति को। पूछें खुद से, क्या ये चीजें मुझे एक बेहतर, ज्यादा दयालु, ज्यादा लचीला इंसान बना रही है? क्या इनसे मेरी जिंदगी में अच्छे फल आ रहे हैं? ये सवाल हमें गाइड कर सकते हैं।
सही कहा, ये एक तरह का सेल्फ चेक है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही है वो है व्यक्ति के अंदरूनी संसार का, उसकी इनर लाइफ का गहरा सम्मान। हमारे जो सब्जेक्टिव अनुभव होते हैं, खासकर वो जो गहरे और बदलने वाले होते हैं, वो फालतू नहीं है। वो इंसान होने का मतलब समझने के लिए बहुत जरूरी डेटा है। जेम्स हमें किताबी बहसों से हटाकर जीवन पर पड़ने वाले असर पर फोकस करना सिखाते हैं।
और मेरे लिए वो फलों बनाम जड़ों वाला तर्क सबसे ज्यादा पावरफुल रहा। ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है, खुला दिमाग रखना सिखाता है। ये किसी खास धर्म या पंथ का झंडा उठाए बिना विश्वास की जो ताकत है, जो महत्व है, उसे मान्यता देता है। ये विज्ञान और अध्यात्म के बीच वाकई एक पुल बनाता है और याद दिलाता है कि इंसान का मन और अनुभव हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा और हाँ, रहस्यमयी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।